नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमा नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है नई दिशा। ओफो, लेकिन आज ये सब कुछ मुझे अकेले ही क्यों बोलना पड़ रहा है, न जाने ये जगत कहाँ रह गया।
प्रेमा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
अरे जगत, आओ ना, कहाँ रह गए थे तुम?
बस वो क्या है ना प्रेमा, आज मुझे कुछ ऐसी नैतिक जिम्मेदारियों का पता चला जिसका आभास मुझे भी नहीं था।
नैतिक जिम्मेदारियों का पता चला, क्या मतलब?
मतलब ये प्रेमा कि आज मैं अपने एक HIV पॉजिटिव दोस्त के पास गया था, जिसका कि मैं तुम्हें और हमारे श्रोताओं को नाम नहीं बता सकता हूँ। बातचीत के दौरान उसने मुझे बताया कि कैसे वो दूसरे लोगों को HIV पॉजिटिव होने से बचाने की जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है।
लेकिन वो कैसे?
अब ये भी तो एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी ही तो है ना, जिस तरह से हम लोगों को HIV के प्रति जागरूक करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह से HIV पॉजिटिव इंसान भी इसमें अपना योगदान दे सकता है और दूसरों को HIV पॉजिटिव होने से बचा सकता है।
जगत, तुम्हारे दोस्त ने और क्या क्या बताया, जरा मुझे और हमारे श्रोताओं को भी तो बताओ, ताकि हमें भी उन जिम्मेदारियों की जानकारी हो सके।
तो ठीक है, उसके लिए तुम्हें और हमारे श्रोताओं को मेरे साथ बढ़ाना होगा एक कदम।
एक कदम?
अरे भाई, हमारे पहले सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ। अगर आप में से कोई भी HIV पॉजिटिव है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी वजह से कोई और HIV पॉजिटिव ना हो, और इसमें आपका सहयोग सबसे अधिक मायने रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा दोस्त जब कभी भी अपने रक्त की जांच के लिए जाता है या फिर कभी भी किसी बीमारी के दौरान उस पर किसी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पूरी तरह से इस बात की संतुष्टि करता है कि सिरिंज को इस्तेमाल करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है या नहीं।
सचमुच जगत, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ प्रेमा, ऐसा करके उसे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि उसके कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं होगा, और साथ ही दोस्तों वो कभी भी रक्तदान नहीं करता।
ये तो बहुत सही बात है जगत, वैसे सभी को रक्तदान करना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो आपको रक्तदान बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
हाँ, इसके अलावा प्रेमा, मेरे उस दोस्त ने अपनी जीवन साथी यानी कि अपनी पत्नी को अपने HIV पॉजिटिव होने के बारे में सब कुछ बता दिया है।
अब ये हुई ना पूरी जिम्मेदारी।
हाँ, यानी कि 100% वफादारी। इसके अलावा प्रेमा, उसने HIV/AIDS पर काम कर रही संस्थाओं के जरिए समाज में अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है।
वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारा दोस्त अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में निभा रहा है।
दोस्तों, अगर आप में से भी कोई HIV पॉजिटिव है तो आप भी मेरे दोस्त की तरह इन सब बातों का पूरा ध्यान रखिए और उन्हें पूरी तरह से निभाइए। और दोस्तों, अगर आप भी HIV से जुड़े किसी भी विषय पर हमसे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हम जो चलने लगे, चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते।
तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट भेजा फ्राई की तरफ।
तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, ऐसा कौन सा सर्वाधिक संक्रमण या बीमारी है जो HIV से जुड़ा हुआ है,
और इसका सही जवाब है ऑप्शन B, यानी कि TB।
और दोस्तों, एपिसोड 34 का सही जवाब देकर हमारी आज की भेजा फ्राई कैप जीत ली है सुधर कुमार ने फतेहपुर UP से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की।
और आज का सवाल है, HIV का वायरस शरीर की कौन सी प्रतिरोधक कोशिकाओं को नष्ट करता है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, HIV का वायरस शरीर की कौन सी प्रतिरोधक कोशिकाओं को नष्ट करता है? और आपके ऑप्शंस हैं A CD4, B मैक्रोफेज, सी लाल रक्तगण और डी जी सेल। अपने ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। ए CD4, बी मैक्रोफेज, सी लाल रक्तगण और डी जी सेल।
दोस्तों, ये है वो सवाल जो आपको बना सकता है हमारी भेजा फ्राई कैप का विजेता। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND38 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ABC या D और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। जगत, अक्सर हमारे पास कई सारे ऐसे पत्र आते हैं जिसमें हमारे श्रोता ये जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिर काउंसलिंग के दौरान एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति और डॉक्टर के बीच क्या बातें होती हैं, किस तरीके से डॉक्टर व्यक्ति को उसका HIV स्टेटस बताता है और इसके बारे में उसे कैसे समझाता है।
वाकई प्रेमा भाई, ये तो हमारे श्रोताओं का हक है कि वो हमसे HIV के संबंध में जो कुछ भी जानने की इच्छा जताएं, हम उसकी जानकारी उन्हें दें। और आज उनकी इसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम में शामिल किया है भारत बड़के जी को, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के ART सेंटर में काउंसलर हैं।
तो आइए दोस्तों, बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
थैंक यू।
अच्छा भारत जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर कोई महिला या पुरुष HIV पॉजिटिव आता है तो उसका स्टेटस बताने से पहले क्या कुछ सोचा जाता है या उसे शुरुआत में कोई काउंसलिंग प्रदान की जाती है?
जब किसी पेशेंट का हम सैंपल लेबोरेटरी में भेज देते हैं और उसका रिजल्ट आने के बाद वो जब काउंसलर के पास आता है, तो काउंसलर सबसे पहले जब वो पेशेंट उसके पास जब वो रिपोर्ट लेने आता है, तो अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस समय उसके साथ में एक अलग तरीके से बात की जाएगी, और अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव है तो उसके साथ अलग से बात की जाएगी। अगर उसका नॉन रिएक्टिव आया यानी नेगेटिव अगर आया, तो उसको सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई आपको अभी इस टेस्ट में तो आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आया है, आपको इसका इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन विंडो पीरियड के कारण आपको 3 महीने के अंतराल के बाद इसको एक बार और आपको रिपीट करना पड़ेगा। और अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद में हम जैसा पेशेंट आएगा उसे डायरेक्टली हम ये रिजल्ट नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो हम उसके बॉडी लैंग्वेज को पहचानेंगे, उसकी जिज्ञासा को जानेंगे कि वो अपने रिजल्ट के प्रति कितना सचेत है, क्या उसको इसका पहले से अनुमान था या कुछ नहीं था, ये सारी बातें उसको ऑब्जर्व करनी होती है। एक काउंसलर को ये बातें ऑब्जर्व करनी होती है कि वो अभी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर आप उसको पाते हैं कि वो एक्सेप्ट है तो आप उसको रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन आप अगर पाते हैं कि वो घबराया हुआ है, वो कुछ कन्फ्यूजन में है, तो आपको सबसे पहले उससे आपको रेपो बिल्ड करना होता है। अब रेपो बिल्ड हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो उसको ये पूछेंगे कि भाई आप अभी कैसे आए, आपने सैंपल दिया था उसके बाद में आपके मन में क्या विचार आया, इस तरीके से उसको बोला जाता है। और उसको थोड़ी सी हिंट दी जाती है कि भाई ऐसा है, आपके खून की जांच में थोड़ी गड़बड़ी आई है, इसमें थोड़ा सा आपको इन्फेक्शन है, ये कोई अभी रोग नहीं हुआ है, ये इन्फेक्शन है और ये मैनेज किया जा सकता है, तो आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है और इसके लिए आपको अभी आगे के लिए ART सेंटर में जाके आपको इसका मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा।
भारत जी, ये बताइए, किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को काउंसलिंग में मुख्य तौर पर क्या क्या समझाया जाता है और ये किस हद तक काउंसलिंग में हेल्प करती है?
जिस पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है उसको हमें थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ता है, क्योंकि वो पैनिक हो सकता है, वो रो सकता है, तो ये सारी चीजें काउंसलर को ऑब्जर्व करनी होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। सरकारी अस्पतालों में ART सेंटर्स खोले गए हैं, इसमें इन्फेक्शन का मैनेजमेंट किया जाता है, वहां पे दवाइयां सारी जांचें ये मुफ्त होती है, तो आपको तुरंत अभी आपके आसपास के इलाके में जो बड़े सरकारी अस्पताल है वहां पे ART केंद्र में जाके अपना HIV का मैनेजमेंट करना चाहिए। आपका इसी अंतर्गत जो दूसरा सवाल है कि ये जो काउंसलिंग जो है, जो सलाह जो दी जाती है पेशेंट को, ये किस हद तक उनको फायदा पहुंचाती है, तो एक्चुअली काउंसलिंग ये एक इंटीग्रल पार्ट है इस HIV मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक आप पेशेंट को बैठ के समझाओगे नहीं उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, ये जब तक आप उसको समझाओगे नहीं और समझाने का भी तरीका एक सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस देख के, उसके साथ में उसका पूरा टाइम दे के और उसकी बात समझ के उसको समझाना होता है। तो ये काउंसिलिंग का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स पेशेंट की तरफ से देखा जाता है और पेशेंट उस काउंसिलिंग के द्वारा ही आज एआरटी सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं।
अच्छा, ये बताइए, अपना स्टेटस अपने जीवन साथी को बताने के लिए किस तरह उन्हें समझाया जाता है और अगर वो नहीं मानते हैं तो डॉक्टर क्या कदम उठाते हैं?
क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा मामला होता है, क्योंकि ये उनके फैमिली से रिलेटेड होता है, इस वजह से ये काम काउंसलर के ऊपर सौंपा गया है। काउंसलर उनके साथ रेपो बिल्ड करके जो स्टेटस है उस स्टेटस का फैमिली में न बताने से क्या परिणाम होता है, ये जब उसको विस्तार से समझाता है उसके बाद वो क्लाइंट जो है इस बात के लिए एग्री हो जाता है, इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो अपना जो स्टेटस है वो अपने फैमिली में बता देता है। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो उसको फोर्स करे कि तुझे ये बताना ही है, क्योंकि ये एक उसका मानवाधिकार है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपने अपनी पत्नी को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है एक ना एक दिन सामने आने वाली है, तो आज क्यों ना आए। इसलिए हम उनको ये समझाते हैं कि आपको अपनी पत्नी को बताना चाहिए।
भारत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी जरूरी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
बाखुदा तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहां जब उस जगह तुम ही हो, तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो।
और दोस्तों, अब बात आपकी यानी आपकी बात। दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो चिट्ठी पढ़ने वाले हैं, इसे हमें भेजा है लक्ष्मी बिष्ट जी ने चंबा से, और ये पूछ रही हैं कि एचआईवी टेस्ट कहाँ किया जाता है और क्या आम व्यक्ति ये टेस्ट करवा सकता है। लक्ष्मी जी, एचआईवी टेस्ट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ आईसीटीसी सेंटर है वहाँ किया जाता है और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। और हाँ, इस टेस्ट को कोई भी आम व्यक्ति करवा सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो हमारी सलाह ये है कि अपने नजदीकी आईसीटीसी सेंटर में जाएं और अपना टेस्ट करवाएं।
सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रही।
और हमारा दूसरा सवाल है सुबोध सिंह का रुद्रप्रयाग से, और ये पूछ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना ब्लड टेस्ट किए कैसे पता चलता है कि उसे एचआईवी है। सुबोध जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिना रक्त जांच के एचआईवी का पता नहीं चल सकता है और किसी को देखने से हम ये नहीं बता सकते कि वो एचआईवी से संक्रमित है या नहीं।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी एचआईवी के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
चिट्ठी भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा naydishaa@gmail.com।
जगत, अब जानकारियाँ तो हम काफी दे चुके हैं, क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए।
बिल्कुल प्रेमा, तो दोस्तों आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए आइए सुनते हैं इस धारावाहिक की 38वीं कड़ी। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना प्रधान अपने आदमियों को जयपाल की दुकान में से सामान बाहर फेंकने का आदेश देता है, तभी सूरज वहां पहुंच जाता है और प्रधान के पैसे चुकाकर जयपाल की मदद करता है और प्रधान को जयपाल से सारे गांव के सामने माफी मांगने को कहता है।
उधर शीला की तबीयत खराब है, वो सुमन से बाहर से पानी लाने के लिए कहती है लेकिन सुमन पढ़ाई का बहाना बनाकर पानी लाने से मना कर देती है और शीला को बीमारी की हालत में खुद पानी लेने बाहर जाना पड़ता है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
धनवंती बीवी जी, आज जो सूरज भाई जी ने किया ना, ये काम तो गांव वालों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखा कैसे उस प्रधान के बच्चे की छुट्टी कर दी।
लेकिन फिर भी प्रधान से दुश्मनी।
अरे बीबी जी, तुम भी बेकार में सोचती हो। ये प्रधान ना बस गरजने वालों में से है, देखना कुछ नहीं करेगा। हाय, ये कौन गिरी?
अरे चल तो कटोरी, जरा देखे।
अरे तो राजन मास्टर की घर वाली है।
हे भगवान, ये तो माँ बनने वाली है।
बीबी जी, इन्हें उठाकर किसी तरीके से इनके घर पहुँचाते हैं और जल्दी से मास्टर जी को खबर भी करते हैं।
हाँ हाँ, आ तो कटोरी
लो, हाथ दीजिए
आराम से। बस शीला, सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं, आराम से।
यार मोहित, रक्तदान करने वाले लोगों की सूची बनाने का काम तो हमें मिल गया, पर तुझे क्या लगता है, लोग रक्तदान करेंगे?
करेंगे क्यों नहीं, जब उन्हें रक्तदान के फायदों के बारे में पता चलेगा तो वह जरूर रक्तदान करेंगे।
मोहित, ये सामने क्या हो रहा है?
चल चल, चल कर देखते हैं।
बस बस शीला बीबी जी, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे।
अरे कटोरी, इन्हें क्या हो गया?
बेटा मोहित, जाकर जल्दी से मास्टर जी को खबर कर दे, उनकी घर वाली फिसल कर गिर गई है।
क्या?
हाँ, हम भी इन्हें इनके घर पर ही लेकर जा रहे हैं।
हाँ ठीक है, हम अभी जाते हैं। चल सुरेंद्र।
हाँ चल।
सुमन, अरे ओ सुमन।
बस बस बीबी जी, यही खाट पर लिटा दूँ।
हाँ जरा आराम से।
अरे सुमन कहाँ गई?
सुमन
कौन?
अरे अरे, इन्हें क्या हुआ?
गधेरे पर पानी भरने गई थी, ऐसी हालत में पैर फिसल गया।
हे भगवान, अब क्या करें?
शीला, शीला, क्या हुआ मेरी शीला को?
मास्टर जी, ये समय देर करने का नहीं है, दर्द बहुत हो रहा है, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाने का इंतजाम कीजिए।
मैं अभी शीला को हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना।
सचमुच माँ, अगर तुम वहां होती तो तुम्हारी भी हंसी छूट जाती। प्रधान का मुंह सब लोगों के सामने बस इतना सा रह गया था, इतना सा।
सचमुच बेटा, जरूरतमंद की मदद कर तूने बहुत अच्छा किया है।
हाँ माँ, और वैसे भी जयपाल मेरा दोस्त है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
आज इधर सारे गांव में तेरे ही चर्चे हैं, और उधर रबीता ने भी अच्छे नंबर लाकर तेरा नाम खूब रोशन कर दिया है।
वो तो है ही माँ, आखिर बेटी किसकी है, यो रबीता।
पोती किसकी है। बस बेटा, अब जल्दी से एक अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दे।
पिताजी, मैं माँ को देखकर आती हूँ।
हाँ बेटा जा, देखा वो कटोरी के साथ ही थी वैसे तो। माँ, ये तुम रबीता के सामने क्या बातें लेकर बैठ जाती हो?
क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे एक उम्र पर लड़की की शादी भी तो करनी होती है।
हाँ माँ, करनी होती है, लेकिन अभी वो उम्र नहीं आई है रबीता की।
अरे जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी तो पूरे 11 साल की थी, और रबीता ने तो फिर भी पूरे 15 कर लिए हैं।
माँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि रबीता का अभी गाँव के स्कूल में आखिरी साल है, लेकिन उसकी पढ़ाई अभी बाकी है, जिसके लिए उसे गांव से बाहर कॉलेज जाना होगा।
कॉलेज? अब तू भी धनवंती की तरह ही बातें करने लगा।
माँ, अब उसे बीच में मत लाइए, उसने मुझे कुछ नहीं कहा।
तो ठीक है, मेरी बात भी सुन ले, इस साल हर हाल में रबीता की शादी होनी ही चाहिए।
आप भी मेरी एक बात साफ तौर पर सुन लो, रबीता की शादी तब तक नहीं होगी जब तक वो अपनी सारी पढ़ाई खत्म नहीं कर लेती।
डॉक्टर, डॉक्टर।
राजन जी, आप?
डॉक्टर देखिए ना मेरी शीला को क्या हो गया डॉक्टर।
अरे इनकी हालत तो बहुत खराब है। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय, इन्हें फौरन अंदर लेके चलिए।
आराम से डॉक्टर, कुछ भी करके मेरी शीला और मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर बचा लीजिए।
घबराइए मत राजन जी, आप यहाँ बाहर बैठिए, मैं देखती हूँ।
डॉक्टर प्लीज डॉक्टर।
पिताजी, पिताजी आप फिक्र मत करिए, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ हाँ बेटा, सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा।
जिसने जन्म यह पाया, किसको झूलने झुलाया, नजदीक सुलाया, गोदी में उठाया, कांधे पे घुमाया।
तो दोस्तों ये था धारावाहिक जीवन की राह, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा।
जगत, हमने इस धारावाहिक में कई जगह एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव की बात की है।
हाँ?
और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल।
लेकिन कई बार मैंने सुना है कि सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि कई सारे स्वास्थ्य केंद्रों में एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनका इलाज करने से मना भी कर दिया जाता है।
हाँ प्रेमा, ऐसा कभी कभी होता है जो कि बेहद गलत है और गैर कानूनी भी। संविधान में एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को हमारी तरह सभी अधिकार प्राप्त हैं, और अगर कोई ऐसा करता है दोस्तों तो वो कानून का उल्लंघन करता है। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने सामने इस तरीके से किसी स्वास्थ्य केंद्र में किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भेदभाव होता हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे?
पहले तो ये नहीं होता है, बट अगर कहीं होता भी है तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बड़े अधिकारियों से इसकी बात करनी चाहिए, और या फिर जैसे पेपर में कुछ कटिंग्स डाल के हमें यह बात, इस चीज़ को हमें आगे तक पहुंचाना चाहिए। पर मेरे हिसाब से ये, जहां तक मेरा ख्याल है, ये चीज़ अब नहीं पाई जाती है, पर फिर भी हो तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठानी चाहिए।
हम उनका विरोध करेंगे और उन्हें एचआईवी पॉजिटिव के सही कारणों के बारे में बताएंगे कि ये किस वजह से होता है और इसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि ये भेदभाव किसके द्वारा किया गया, कौन सा कर्मचारी, डॉक्टर के द्वारा या किसी वहाँ पे सहायक के द्वारा अगर भेदभाव किया जाता है, उन कारणों को जानना। पहले तो उसको समझाया जाएगा कैसा भेदभाव आप ना करें, क्योंकि ये एचआईवी है, इसको मानसिक जो है हम प्रोत्साहन दें ताकि जल्दी स्वस्थ हो सके, और इस प्रकार जो है उसको जाकर अगर वास्तव ये करता है तो उसके आगे उसके डॉक्टर के पास संपर्क करके कि इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है, इसकी कंप्लेन करके हम जो है इस चीज़ को यहीं पे दबा सकते हैं ताकि आगामी जो वहाँ पे ऐसा कोई केस आए, ऐसा कोई मरीज आए तो उससे ज़्यादा भेदभाव ना हो सके।
हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और बड़े अधिकारियों को इसकी शिकायत करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी हमारे श्रोताओं की राय, और जैसा कि हमारे अधिकतर श्रोताओं ने कहा कि वो इसका विरोध करेंगे, जो कि करना भी चाहिए, और हर गलत काम का विरोध करना हमारा हक है।
आदमी आजाद है, देश भी स्वतंत्र है।
और दोस्तों अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के उस मकाम पर जहां हमें आपसे विदा लेनी होती है, क्योंकि समय हो चुका है और हमें जाना होगा। लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सामूहिक संवाददाताओं का,
जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया,
और सामुदायिक रेडियो हेवलवानी और मंदाकिनी की आवाज का, जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और इसके अलावा हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसके अलावा हम आपको याद दिला दें कि अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं तो कार्यक्रम में हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जरूर भेजिएगा। एसएमएस करने के लिए हमारा नंबर है
9717678223, यानी कि 9717678223। और अपने सवाल भी आप हमें एसएमएस करते रहिए। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
Yeah.